समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
शुभ प्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के संग में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामाचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो अलका, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर लवली लिसनर्स। ट्यून इन टू अस दिस सैटरडे मॉर्निंग, स्टे विद अस फ्रेंड्स, एंजॉय अनदर इंटरेस्टिंग एडिशन ऑफ आज सवेरे। फॉर स्टार्टर्स अलका, लेट्स गिव देम सम न्यूज हेडलाइंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर नाइजीरिया पहुंचेंगे। 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की यह पहली यात्रा होगी। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नाइजीरिया के शीर्ष नेताओं के साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। नाइजीरिया की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी विश्व के कई नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे।
Prime Minister Narendra Modi has said Bodoland in Assam has witnessed a new wave of development after the 2020 peace agreement. Addressing the first Bodoland Mahotsav in New Delhi last evening, the Prime Minister said the 2020 Bodo Peace Accord had not just benefited the Bodo community, but also opened avenues for many more peace accords. He said due to peace accords, more than 10,000 youths have given up arms and violence in Assam alone, and they have joined the mainstream. The Prime Minister said he feels satisfied after seeing the impact of growth in Bodoland, which saw violence and bloodshed nearly 50 years. He said the central government has given a special package of 1,500 crore rupees for the development of Bodoland. Mr. Modi said Assam government has also given a special development package. More than 700 crore rupees has been spent to develop infrastructure related to education, health and culture in Bodoland. Prime Minister Modi said that the NDA government is committed to ensuring progress and prosperity for the vibrant Bodo community. He remarked that the entire Northeast, including Assam, is the Ashta Lakshmi of India, and the dawn of development would rise from eastern India to give new energy to resolve of a developed India. He said the government is constantly making efforts for permanent peace in Northeast, but trying to find amicable solutions to the border disputes between the states of the Northeast. In Jharkhand, political heavyweights from both the NDA and India blocs are crisscrossing the state to garner support for their party's candidates for the second phase of the assembly elections. Senior BJP leader Union Minister Amit Shah will address 3 poll rallies in Dumka, Devghar and Dhanwar today. On the other hand, Congress President Mallikarjun Kharge will hold public meetings in Jamthara and Khijri. Senior Jharkhand Mukti Morcha, JMM leader and Chief Minister Hemant Soren is scheduled to address 6 rallies across the state. RJD leader Tejasvi Yadav will address gathering at Godda. Film star turned politician Mithun Chakraborty will hold rallies in Dumka and Jamthara. Several BJP leaders including Shivraj Singh Chauhan, Hemanta Biswa Sharma and Champai Soren will also campaign in support of NDA candidates. Leaders from the AJSU party and left-wing parties are expected to hold rallies and roadshows in various parts of Jharkhand. The second and the final phase of voting will take place on 20th of November. Counting of votes will take place on the for the 23rd of this month.
Swapak Niyantran Bureau एनसीबी ने दिल्ली में लगभग 900 करोड़ रुपए की कोकीन की सबसे बड़ी खेप का भांडा फोड़ किया है। गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि अब तक की जांच से पता चला है कि विदेश से लोगों का एक समूह इस गिरोह का संचालन कर रहा है। जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की कुछ मात्रा कुरियर या छोटी कार्गो सेवाओं के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी। मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में शामिल व्यक्ति मुख्य रूप से हवाला ऑपरेटर हैं और एक दूसरे को नहीं जानते हैं। साथ ही ये लोग नशीली दवाओं के सौदे में दिन प्रतिदिन की बातचीत के लिए छद्म नामों का उपयोग करते हैं। इस मामले में अब तक गिरोह के दो मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जब्त कोकीन के स्रोत की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है। इससे पहले एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस के आतंकरोधी दस्ते ने गुजरात के तट के नजदीक एक संयुक्त अभियान में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के रैकेट के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की कार्रवाई निर्ममता पूर्वक जारी रहेगी।
In Uttar Pradesh, at least 10 newborns were killed after a massive fire broke out at the Neonatal Intensive Care Unit, NICU, of Jhansi Medical College late last evening. District Magistrate Avinash Kumar told reporters that the fire broke out possibly due to an electrical short circuit. District Magistrate said that prima facie there is information of the death of 10 children. According to the hospital officials, there were 54 infants admitted to the NICU ward and several infants trapped have been rescued. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incident and directed the district administration to expedite the relief work. In a post on X, Chief Minister offered condolences to the families of the deceased infants.
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मंत्रालय 100 से अधिक वंचित कारीगरों और उद्यमियों को मेले में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है और इसका उद्देश्य उनके आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देना है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का उल्लेख किया और कहा कि स्टॉलों में हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद सभी मेड इन इंडिया हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन कारीगरों द्वारा नवीन सहायक प्रौद्योगिकी और शिल्प को प्रदर्शित करने वाले 35 स्टॉल लगाए हैं।
Getting over to some sports news now. In hockey, India will lock horns with China at the ongoing Women's Asian Champions Trophy in Bihar this evening. The match will begin at 4:45 p.m. Indian Standard Time. India heads into the clash after a commanding 30-0 victory over Thailand in the third match on Thursday. Meanwhile, China secured a hard-fought 2-1 win against Japan on the same day. Both teams are undefeated in the tournament. In other matches, Malaysia will face off against Japan at 12:15 p.m. while South Korea will take on Thailand at 2:30 p.m.
और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भारत ने कल जोहान्सबर्ग में चौथे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 135 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने चार मैचों की T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। जीत के लिए 284 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 18.2 ओवर में 148 रन ही बना पाई। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में एक विकेट पर 283 रनों का विशाल स्कोर बनाया। तिलक वर्मा ने 47 गेंदों में 120 रन बनाए जबकि सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने 56 गेंदों में 105 रनों का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए ट्रिस्टन स्टब्स ने सर्वाधिक 43 रन बनाए जबकि भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। तिलक वर्मा को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं सुभद्रा।
Thank you, Alka. Starting with news from Chennai, Tamil Nadu Wildlife Crime Control Bureau's intelligence team seized 5 ivory artifacts worth 20 lakh rupees, arrested 12 people in this connection in Virupuram. The team swung into action after a tip-off that a gang was planning to sell ivory artifacts to prospective clients at a guest house in Viruppuram town. The team also seized a car, two motorcycles and a moped from the perpetrators. They were all produced before a local magistrate who remanded them in judicial custody. The Tamil Nadu government is in the process of establishing research parks at major state universities to foster collaboration between academia and industry on real-world projects. The Secretary of Higher Education Department, K. Gopal, highlighted the state's efforts in using technology for competency mapping of students. He said that this would help identify the specific skills of each student, enabling us to address skill gaps more effectively. He said that the integration of technology with education to prepare students for the demands of the evolving job market. Getting to some Bengaluru news now, the general manager in Southwestern Railway Division, Arvind Srivastava, chaired a meeting with the representatives of Jindal Steelworks in relation to the movement of iron ore, coal and other material with the industry. During this meeting in Hubballi, Arvind Srivastava highlighted the infrastructure developments undertaken by the Railway Division to enhance mobility and transport capacity. He urged Jindal Steelworks to increase their load, assuring them of full support for smoother goods movement. Both railway officials and the steel company representatives exchanged suggestions to improve operational efficiency and capacity enhancement. The meeting discussed ways to use artificial intelligence to enhance operational efficiency. The railway side offered to construct 4 road underbridges or RUBs to ensure seamless goods movement from trucks to the goods trains. We are going to Hyderabad now. The Hyderabad-based International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, ICRISAT, in collaboration with the Bihar Center of Excellence for Millets, Value Chains and local partners, is harnessing scientific innovation to unlock the full potential of millet production in the state with focus on food and nutrition security. According to the ICRISAT, the initiative aimed at positioning Bihar as a leader in sustainable agriculture, enhancing crop resilience and supporting livelihoods for millions. As part of the initiative, trials of various millet types have been conducted at multiple sites, identifying the top-performing varieties lined for expanded trials during this year. So far, 150 farmers have participated in millet seed production across 34 hectares, and improved seed and training have been provided to over 140 farmers. The initiative aims to produce 20,000 kilograms of millet seed during this crop year and plans to expand further as on-ground capacity continues to grow. ICRSIAT's Global Research Program Director for Accelerated Crop Improvement, Dr. Sean Mays, said the millet cultivation in Bihar remained limited, with only around 8,700 hectares under production, yielding approximately 11,200 tons annually. Dr. Mays further said that initiative to address the issues that farmers have been facing recently regarding restricted access to diverse and high-performing millet varieties. Dr. Mays also said the center also introduced on-site millet processing demonstrations, new mechanization tools and field days in Bihar to support smallholders. And Alka, over to you now for the rest of the news.
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यातायात और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों के कामकाज के समय में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, जबकि केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक तय किया गया है। दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। दिल्ली सरकार ने यह कदम सड़क पर वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने और वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वो शहर में ग्रैप 3 के नियमों को प्रभावी रूप से लागू करें। श्री राय ने कल कहा कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली परिवहन निगम 106 अतिरिक्त क्लस्टर बस चलाएगी। उन्होंने बताया कि निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए मेट्रो ट्रेनें के भी 60 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शहर में अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि के बारे में सोशल मीडिया और अन्य रिपोर्टों का संज्ञान लिया है। उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव ने इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, एमसीडी आयुक्त और एनडीएमसी अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इस पत्र में मुख्य सचिव को सभी जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के लिए मिल रहे आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया में सतर्कता बढ़ाने के आदेश दिए हैं। पत्र में पुलिस आयुक्त को सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर निगरानी रखने के लिए फील्ड अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश देने को कहा है। इसके अलावा पत्र में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस एक महीने तक अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में आगे की कार्रवाई करेगी। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी है। 23 सदस्यों वाली इस समिति में प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा के अतिरिक्त संयोजक हर्षदीप मल्होत्रा, सह संयोजक दुष्यंत गौतम, सांसद मनोज तिवारी और अरविंदर सिंह लवली शामिल हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई शहर जिले में अब तक 1922 वरिष्ठ नागरिकों और 187 दिव्यांग मतदाताओं सहित कुल 2109 मतदाताओं ने होम पोस्टल वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है। ये सुविधा 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रदान की गई है, जो महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर जाने में असमर्थ हैं। इन पात्र मतदाताओं के लिए होम पोस्टल वोटिंग 13 नवंबर को शुरू हुई। मुंबई शहर जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के 2139 वरिष्ठ नागरिकों और 217 दिव्यांग मतदाता इस सुविधा के लिए योग्य हैं। होम पोस्टल वोटिंग की प्रक्रिया आज उसका अंतिम दिन है। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनावों को देखते हुए मध्य रेलवे मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष उपनगरीय ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें 21 नवंबर तक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मध्य रेलवे लाइन पर कल्याण तक और हार्बर रेलवे लाइन पर सीएसएमटी से पनवेल तक चलेगी। कोलकाता की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जिलों में तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों और दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में कोहरे का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं दिया है। सर्दी का मौसम धीरे धीरे वहां भी दस्तक दे रहा है। आज सवेरे में अब समय है मौसम का, तो बात कर लें सबसे पहले दिल्ली के मौसम की। तो हल्की धुंध रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में सुबह धुंध और कोहरा छाया रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बाकी महानगरों का बताएं हाल।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 26 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस, maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 20 degrees and the maximum of 31 degrees Celsius.
और अब समय इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई।
टू वेरी इंपॉर्टेंट डेज टूडे एंड एवरी ईयर दिस डे दैट इज 16th द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज ऑब्जर्व्ड टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग वेरियस कल्चर्स एंड एनहांस टॉलरेंस अमंग इंडिविजुअल्स।
बिल्कुल, सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक और संचार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गतिविधियों को पुरस्कृत करता है, जिसका उद्देश्य सहिष्णुता और अहिंसा की भावना को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। उसी वर्ष यूनेस्को के सदस्य देशों ने सहिष्णुता पर सिद्धांत की घोषणा को अपनाया। पुरस्कार का निर्माण यूनेस्को के संविधान के आदर्शों से प्रेरित है, जो घोषणा करता है कि यदि शांति को विफल नहीं होना है तो उसे मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता पर स्थापित किया जाना चाहिए।
So, Alka, we need tolerance in all spheres of life. Without tolerance, there won't be any peace and harmony. Live and let live and be kind to one and that and one and all, and that should be our motto.
बिल्कुल और सुभद्रा, जीवन में भी यही होता है कि आपको बड़े ही संतुलित तरीके से और समझते हुए, हर किसी को समझते हुए चलना पड़ता है.
दैट इज ट्रू, यस. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, टुडे इज नेशनल प्रेस डे. इट इज ऑब्जर्व दिस डे नवंबर 16 ईच ईयर टू ऑफ कोर्स एक्नॉलेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. द डे सेलिब्रेट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड ऑल्सो अ नॉड टू दोज जर्नलिस्ट, दोज राइटर्स हु प्ले अ क्रूशियल रोल हियर. द प्रेस इंस्पायर्स पीपल टू थिंक बियॉन्ड द सोशल नॉर्म्स, गिव्स देम फ्रीडम टू वॉइस देयर ओपिनियन, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी दैट सस्टेन्स डेमोक्रेसी एंड एनश्योर दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज प्रोटेक्टेड. And this year's theme is going to be changing nature of press, and that's the theme. And Alka, we have too many choices these days in terms of digital platforms, social media and other, blogs and social media sites that, of course, that allow the masses, the common people to access information and also, reach out if they have any grievances.
बिल्कुल सुभद्रा, और ये जो इतनी अच्छी हमें चीज मिली है, पहले अभिव्यक्ति की इतनी ज्यादा स्वतंत्रता है, उसके मंच उतने सारे नहीं थे, लेकिन अब जब ये मंच हमें मिले हैं तो इनका जो उपयोग है वो भी हमें बड़े ही सोच समझकर और बड़े ही संवेदनशील तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी की संवेदना ना दुखे, कोई हर्ट ना हो, ये भी इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि आप कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं या कोई भी मैसेज अगर आप शेयर करते हैं तो आप ये सोचिए कि उसका असर क्या पड़ रहा है. तो निगेटिविटी भी बहुत ज्यादा ना हो, सकारात्मक सोच हो, और इन मंचों का जो उपयोग है वो हम बहुत ही सोच समझ कर करें.
दैट्स ट्रू, यस. एंड नाउ लेट्स गेट टू सम इवेंट्स. 1904 दिस डे द वैक्यूम ट्यूब precursor to the transistor is invented by John Ambrose Fleming. And 1907, Oklahoma became the 46th state of the United States. And 1945 this day, UNESCO founded. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is a special branch of the United Nations which promotes peace and well-being through education, scientific collaboration, cultural understanding and exchange. It is headquartered in Paris, France, and has 195 state members. And friends, in 1959, the famous musical The Sound of Music opened in L'Enfantin Theater in New York City. Created by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II, The Sound of Music ran for 1,443 performances. 1995, this day, Mass Rapid Transit System, MRTS, India's first elevated suburban railway, becomes operational in Madras. And 2000, the government to reduce equity holding in nationalized banks from 51% to 33%.
बिल्कुल, और अब आ जाते हैं हम व्यक्तित्वों के बारे में.
ओह, वन सेकंड, देन दैट मींस यू डोंट हैव एनीथिंग टू से. आई हैव टू मोर. 2001, द फर्स्ट हैरी पॉटर फिल्म हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन इज रिलीज्ड. 2013, सचिन तेंदुलकर प्लेज हिज वेरी लास्ट क्रिकेट मैच बिफोर रिटायरिंग इन मुंबई'स वानखेड़े स्टेडियम अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज.
बिल्कुल, अब व्यक्तित्वों की बात कर लें तो आज हम याद कर रहे हैं हिंदुस्तानी जबान और हिंदुस्तानी तहजीब के बड़े मजबूत और दिलेर शायर अकबर इलाहाबादी को. उन्होंने लिखा है, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ. उनके कलाम में उत्तरी भारत में रहने बसने वालों की तमाम मानसिक व नैतिक मूल्यों, तहजीबी कारनामों, राजनीतिक आंदोलनों और हुकूमती कार्रवाईयों के भरपूर सुराग मिलते हैं. उनकी शायरी जमाना और जिंदगी का आईना है. उनका अंदाज बयां कहीं कहीं कलंदराना, कहीं शायराना, कहीं तराश खराश के साथ वही कहीं सादा, कहीं पारंपरिक और कहीं आधुनिक और इनकलाबी है. अकबर इलाहाबादी पारंपरिक होते हुए भी बागी थे और बागी होते हुए भी सुधारवादी. वो शायर थे, शोर नहीं मचाते थे, और ये शायर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो शायरी करे, शोर न मचाए. और अकबर इलाहाबादी की शायरी को महज हास्य शायरी के खाते में डाल देना उनके साथ ही नहीं, उर्दू शायरी के साथ भी नाइंसाफी है. गजल, कथा, रुबाई और नज्मों की शक्ल में अकबर ने जितना उम्दा कलाम छोड़ा वैसा आधुनिक युग के किसी शायर के यहाँ मौजूद नहीं है. उन्होंने गजल की पारंपरिक विधा में इनकलाबी तजुर्बे किए हैं. उन्होंने क्या खूब लिखा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता.
Beautiful. And in 1960, Academy Award winning Hollywood actor Clark Gable passed away. Gable starred in iconic films like Gone with the Wind and was one of the most famous popular actors of his time. His smile and confidence on screen made him a superhero in his day, and he is revered today as an icon of the golden age of Hollywood. And friends, November 16, 1873, birth anniversary of American composer W.C. Handy. That's William Christopher Handy, Memphis Music's first international star, its first great songwriter, and its first major music mogul. He changed the course of popular music by integrating the blues idiom into then-fashionable ragtime music. Rightly called the father of the blues, in his honor, Memphis erected a statue in Handy Park. And later in the year 1969, the U.S. Post Office issued a W.C. Handy stamp. Playing in the background is Handy's best-known work, the classic St. Louis Blues, rendered by the great Louis Armstrong. Birthday of Texas blues rock super drummer Chris Layton, drummer for blues legends Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, until Vaughan's tragic death in 1990. The band sold 12 million records, won 4 Grammy Awards, and influenced a generation of blues musicians. And this year, friends, they will be inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. Layton continues with several blues artists, Susan Tedeschi, Buddy Guy, Kenny Wayne Shepherd, and more. He is currently touring with Jimi Hendrix Experience Group. Here's a tune to celebrate his birthday.
You're gonna miss me, little darling, the day that I'm gone. You're gonna miss me, little darling, the day that I'm gone. 'Cause I'm leaving in the morning, won't be back at all. You have won me back, you darling, you're on fire.
Birthday of Pulaila Gopichand, badminton player champ who in 2001 became the second Indian to win the prestigious All England Men's Singles Badminton Championship. Gopichand carried Indian badminton to great heights at the 1998 Commonwealth Games, where he won an individual bronze and helped the national side win the silver medal. In 2006, the Badminton Association of India named him the coach of the Indian national badminton team, and in 2008 he opened a badminton academy in Hyderabad. And friends, jazz singer, pianist Diane Krall celebrates her birthday today. Born in a musical family from Canada, Krall, she began playing piano professionally at age 15 and later studied at the Berklee College of Music in Boston and privately with jazz pianist Jimmy Rolls. Performing in the United States and Canada, Krall developed a repertoire that included subtle, sophisticated songs and spare accompaniment, a cool jazz rhythm section featuring her own piano, occasionally augmented by discrete string orchestra background, a cover of an old jazz tune, rhythmic with some great vocals from Diane Krall, East of the Sun, West of the Moon. Happy birthday, Diane.
Forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way.
और आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज कलाकार डॉक्टर श्रीराम लागू को।
इतना ख्याल मत किया कर मेरा राजू, घर पर अपनों से जो जिल्लत मिलती है ना, उसके बाद तुम्हारा प्यार सहा नहीं जाता।
तुम तो लखपति बाप की इकलौती बेटी हो, लेकिन शकुंतला का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर उसे छोड़ दिया तो वो लवारिसों की तरह दरबदर की ठोकरे खाते फिरेगी।
उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी काम किया। डॉक्टर श्रीराम लागू ने अपने फिल्मी करियर में 100 से अधिक हिंदी और 40 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया। सिनेमा के अलावा मराठी, हिंदी और गुजराती रंगमंच से जुड़े रहे। डॉक्टर श्रीराम लागू ने 20 से अधिक मराठी नाटकों का निर्देशन भी किया और मराठी थिएटर में तो उन्हें 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक गिना जाता है। इनका जन्म आज ही के दिन 16 नवंबर 1927 को सतारा जिला महाराष्ट्र में हुआ था। खास बात यह कि फिल्मों में आने से पहले डॉक्टर श्रीराम लागू पेशे से डॉक्टर थे, ईएनटी स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने एमबीबीएस और एमएस दोनों मेडिकल डिग्री प्राप्त की थी। डॉक्टर लागू को एक्टिंग का शौक मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही लग गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और उन्होंने 1971 में आई आहट एक अजीब कहानी से हिंदी सिनेमा में बतौर एक्टर पारी शुरू की और अपने करियर में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए। और आज हम याद कर रहे हैं शोक चुलबुली मधुर मुस्कान वाली शांत सौम्य अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को।
मेरा जान, मेरा साजन, मेरा बाला, मेरा बाला, मेरा मजनू, मेरा मजनू, मेरा राजा।
और सुभद्रा घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से हम अनुमति लें, तो अलका सिंह और सुभद्रा को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।